लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी लोग मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति और हिंसा से पीड़ित लोगों के प्रति उदार एकात्मता प्रदर्शित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए तीर्थ यात्रियों और विश्वासियों का हे पिता हमारे प्रार्थना पर अपने धर्म शिक्षा माला देने के पूर्व अभिवादन करते हुए कहा।
करी फ्रतेली सोरेले, बोंजोर्नो। Continuiamo il nostro percorso per imparare sempre meglio a pregare come Gesù ci ha insegnato.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम यीशु ख्रीस्त के द्वारा सिखलाई गई हे पिता हमारे की प्रार्थना पर अपने धर्म शिक्षा माला को आगे बढ़ाते हुए यीशु की तरह अच्छी प्रार्थना करने की शिक्षा को जारी रखते हैं। यीशु हमें कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में प्रार्थना करते हुए कहो, हे पिता। यीशु अपने शिष्यों से चाहते हैं कि वे फरीसियों की तरह गलियों में खड़े होकर प्रार्थना ना करें, जिससे लोग उन्हें देखें और उनकी प्रशंसा करें। सच्ची प्रार्थना हमारे हृदय के अंतःस्थल की गहराई में रहस्यमयी ढंग से होती है, जिसे केवल ईश्वर देखते हैं। यह दिखावे का परित्याग करती है। ईश्वर के सामने हमारा दिखावा करना असंभव है। यह अपनी गहराई में एक शांतिपूर्ण वार्ता है, जहां हम दो प्रेम करने वालों, मानव और ईश्वर को एक दूसरे के संग नजरों से नजरें मिलाकर देखता हुआ पाते हैं। संत पापा ने कहा कि शिष्यों की प्रार्थना अपने में विश्वासपूर्ण और व्यक्तिगत है, जहां हम घनिष्ठता का अभाव नहीं पाते हैं।
Nel segreto della coscienza il cristiano non lascia il mondo fuori della porta della sua camera.
अपने हृदय के अंतरतम में एक ख्रिस्तीय अपने को दुनिया से अलग नहीं करता, लेकिन वह अपने हृदय में लोगों को और परिस्थितियों को वहन करता है। हे पिता हमारे की प्रार्थना में हम मैं का अभाव पाते हैं। हे पिता हमारे की प्रार्थना में यीशु हमारे ओठों में शब्द तेरा को अंकित करते हैं, जो कि हमारे ख्रीस्तीय प्रार्थना को वार्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे। इसके बाद द्वितीय भाग में हमारे को पाते हैं, हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। हमारे जीवन के अति मूलभूत सवाल जैसे भूख मिटाने हेतु आहार, जैसे सारी बातों को हम बहुवचन में पाते हैं। हमारे ख्रिस्तीय प्रार्थना के आधार पर हम केवल अपनी भूख मिटाने हेतु रोटी की मांग नहीं करते, वरन हम संसार के सारे गरीबों के लिए भोजन की मांग करते हैं। ईश्वर से वार्ता के दौरान हम केवल अपनी व्यक्तिगत चिंता नहीं करते हैं। इस प्रकार हम अपने को ऐसे प्रस्तुत नहीं करते मानो केवल दुनिया में हम ही दुखों से घिरे हुए हैं। एक समुदाय के रूप में अपने भाई बहनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने से बड़ा और कोई भी प्रार्थना नहीं है। संत पापा ने कहा,
Nella preghiera un cristiano porta tutte le difficoltà delle persone che gli vivono accanto.
ख्रिस्तीय अपनी प्रार्थना में अपने जीवन की सारी बातों को ईश्वर के सामने लाता है। अपने संध्याकालीन प्रार्थना में वह ईश्वर के सामने दिन भर के अपने दुख तकलीफों को लाता है। वह अपने मित्रों यहाँ तक कि अहितकारियों के लिए भी विनती करता है। वह उन्हें अपने लिए खतरों के रूप में नहीं देखता और अपने से दूर नहीं करता है। यदि कोई अपने जीवन में इस बात का अनुभव नहीं करता कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दुख सहते हैं, यदि वह गरीबों के आंसू से प्रभावित नहीं होता, यदि वह अपने को इन बातों से अभ्यस्त पाता, तो इसका अर्थ यह है कि उसका हृदय पत्थर का हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हमें ईश्वर से यह प्रार्थना करने की जरूरत है कि वह अपना आत्मा भेजकर हमारे हृदय को कोमल बनाए।
Il Cristo non è passato indenne accanto alla miseria del mondo. Ogni volta che percepiva una solitudine, un dolore del corpo, dello spirito, provava un senso forte di compassione, come le viscere di una madre.
Gesù Cristo, dunya ki pareshaniyon se apne ko nazarandaj nahi karte hain. जब कभी उन्हें कोई अकेला शारीरिक या आध्यात्मिक रूप में दुख से पीड़ित मिला, तो वे उनके प्रति दया से वशीभूत हो गए, मानो एक माँ अपने बच्चों के दुख को देखकर द्रवित हो रही हो। दया के भाव सुसमाचार में महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। इसे हम भले सामारी के दृष्टांत में पाते हैं, जो डाकुओं के हाथों में पड़े घायल व्यक्ति की सहायता करता है, जबकि कठोर हृदय वाले वहां से गुजर जाते हैं। संत पापा ने कहा कि हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, तो क्या मैं अपने इर्द गिर्द दुख में पड़े लोगों की याद करता हूं? क्या मैं अपनी प्रार्थना को एक दर्द निवारक दवाई के रूप में देखता हूं, जो मुझे शांति प्रदान करती है? यदि ऐसी बात है, तो प्रार्थना के प्रति मेरी समझ अच्छी नहीं है। निश्चय ही यह मेरे लिए एक ख्रिस्तीय प्रार्थना नहीं है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त के द्वारा सिखलाई गई हमारे मुझे अकेले होने से बचाता और हमें अपने भाई बहनों के प्रति उत्तरदायी बनाता है।
Ci sono uomini che apparentemente non cercano Dio, ma Gesù ci fa pregare anche per loro. Perché Dio cerca queste persone più di tutti.
बहुत से लोग हैं जो ईश्वर की खोज नहीं करते, लेकिन ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वे उनकी भी चिंता करते हैं। वे निरोगों के लिए नहीं, वरन रोगियों और पापियों के लिए आए, अर्थात हम सबों के लिए, क्योंकि हम जो अपने में यह सोचते कि हम भले चंगे हैं, तो यह सत्य नहीं है। यदि हम न्याय के लिए कार्य करते, तो हम अपने को दूसरों से अच्छा ना समझें, क्योंकि ईश्वर अच्छे और बुरे हम सबों पर अपना सूर्य उगाते हैं। हम ईश्वर से सीखें जो सबों के साथ अच्छे हैं, वे हमारी तरह नहीं जो केवल कुछ ही लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं। हम पापी और धर्मी क्यों ना हों, हम भाई बहन के समान हैं जिसे ईश्वर प्रेम करते हैं। हम अपने प्रेम में जीवन के द्वारा न्याय किए जाएंगे, न केवल भावनात्मक प्रेम के कारण, वरन करुणामय और ठोस प्रेम के कारण, जिसकी चर्चा सुसमाचार करता है। जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए किया, तुमने वह सब मेरे लिए किया। और इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के साथ हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों का अभिवादन किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन प्रेस विज्ञप्ति अनुसार संत पापा फ्रांसिस कल गुरुवार 14 फरवरी को रोम स्थित एफएओ मुख्यालय अर्थात संयुक्त राष्ट्र कृषि विकास के अंतर्राष्ट्रीय कोष गवर्नरों की परिषद के 42वें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। संत पापा सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एफएओ मुख्यालय में रहेंगे और वहां गवर्नरों की परिषद को संबोधित करेंगे। उसके बाद आदिवासियों के प्रतिनिधियों के एक दल से मुलाकात करेंगे और अंत में कृषि विकास के अंतर्राष्ट्रीय कोष के कर्मचारियों और उनके परिजनों को अभिवादन कर संदेश देंगे। संत पापा फ्रांसिस रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि एजेंसी मुख्यालय का दौरा 3 बार कर चुके हैं, नवम्बर 2014, जून 2016 और अक्टूबर 2017 में। और संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार 12 फरवरी को कार्डिनल आंजेलो बेच्चू के नेतृत्व में परम धर्म पीठ संत प्रकरण परिषद द्वारा संत और धन्य घोषणा के लिए प्रस्तावित आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दे दिया है। उनमें भारत की पवित्र परिवार की धर्म बहनों के धर्म समाज की संस्थापिका धन्य सिस्टर मरिया तेरेसा चिरामेल मांकिडियन है। इनका जन्म 26 अप्रैल 1876 को पुथेनचिरा केरल में हुआ था और 8 जून 1926 को कुजीकुटिस्त्री केरल में निधन हुआ। इनके अलावा एक धन्य और 6 ईश सेवकों को भी धन्य घोषणा के लिए प्रस्तावित आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दे दिया है। उनके नाम हैं धन्य कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन, इंग्लैंड में संत फिलिप नेरी धर्म संघ के संस्थापक, ईश सेवक शहीद येसु समाजी पुरोहित सल्वातोर विक्टोरियो एमिलियो मोस्कसो कार्नेस, हंगरी और इंटरगाम के महाधर्माध्यक्ष ईश सेवक कार्डिनल जोसेफ माइंस जेंट, ईश सेवक जोवानी बत्तीस्ता जुबोनी धर्म प्रांतीय पुरोहित एवं पवित्र परिवार सेकुलर संस्थान के संस्थापक, ईश सेवक येसु समाजी पुरोहित इमानुएल ग्रासियो नीटो, ईश सेविका सिस्टर सेराफिना फोम मिशनरी सिस्टर्स ऑफ द गुड मैसेज की संस्थापिका और ईश सेविका सिस्टर मरिया बेनेरिस ड्यूक हेनेकर द सिस्टर्स ऑफ द अनाउंसिएशन धर्म समाज की संस्थापिका। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को ट्वीट प्रेषित कर सभी ख्रिस्तियों को सांसारिक दिखावे की जिंदगी से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति कभी भी अपने को स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं बना पाएगा। संदेश में संत पापा ने लिखा, खुद को स्वर्ग के लिए तैयार करने हेतु सांसारिक तड़क भड़क से अपने आप को अलग रखना जरूरी है। बाल सैनिकों के प्रयोग के खिलाफ 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, विभिन्न अवसरों पर संत पापा फ्रांसिस ने वैश्विक घटना के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है और इस प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया है और इसे उन्होंने दास्ता का रूप कहा है। संत पापा ने हाल ही में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रोमियो दयलायर और डॉक्टर शेल्टी विटमैन से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल रोमियो ने एक संगठन शुरू किया जिसका उद्देश्य बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग को समाप्त करना है। डॉक्टर शेल्टी विटमैन संगठन का कार्यकारी निदेशक हैं। बाल सैनिक पहल एक वैश्विक साझेदारी है जो दुनिया भर के बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग को रोकने के लिए प्रशिक्षण और उपकरणों के साथ नेताओं को लैस करने, बाल सैनिकों के मुद्दे पर सुरक्षा क्षेत्र के दृष्टिकोण को सामने लाती है। जनरल डेलायर और डॉक्टर विटमैन ने 17 जनवरी को संत पापा से मुलाकात करने के बाद वाटिकन न्यूज को बताया कि संत पापा फ्रांसिस के साथ बैठक महत्वपूर्ण पारस्परिक हित के सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई। सेवानिवृत्त कैनेडियन लेफ्टिनेंट जनरल रोमियो डेलायर 1994 में हुए रवांडा के भयानक नरसंहार के गवाह हैं, जहां उन्होंने बच्चों को युद्ध के हथियार बनते और मरते देखा था। वे नरसंहार से पहले और उसके दौरान रवांडा के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के फोर्स कमांडर थे। नियोजित नरसंहार और कार्यवाही करने के उनके दोहराए गए अनुरोध के बारे में दी गई जानकारी के बावजूद उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था और संयुक्त राष्ट्र ने अपनी शांति सेना को एक वैक्यूम बनाने के लिए वापस ले लिया, जिसमें 100 दिनों के भीतर 8,00,000 से अधिक लोग मारे गए थे। डेलायर ने अपनी पुरस्कार विजेता पुस्तक शेक हैंड्स विद डेविल में रवांडा में मानवता की विफलता का वर्णन किया है। डेलायर ऐसे आतंक को दोबारा होने से रोकने की एक गहरी प्रतिबद्धता के साथ लौटे। उन्होंने बताया कि संत पापा से मुलाकात कर वे वाटिकन और संत पापा के सहयोग और समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। जनरल ने कहा कि संत पापा ने 2013 से आधुनिक गुलामी के संकट के बारे में विभिन्न स्थानों में अपने विचार प्रकट किया है। संत पापा ने हमारे कार्यों के बारे में जानने के लिए बड़ी दिलचस्पी दिखाई और वे विश्व नेताओं को प्रभावित करने के लिए अपना समर्थन देने हेतु उत्सुक हैं। उधर कार्मेल धर्म संघियों ने ओल्ड गोवा में समारोही ख्रिस्तियाग के साथ एशिया में अपने 400 साल के अस्तित्व के सप्ताह भर के समारोहों का समापन किया। ओल्ड गोवा से ही धर्म संघ ने अपनी यात्रा शुरू की थी। 10 फरवरी को सी महागिरजाघर में दुनिया भर से आए कार्मेल धर्म संघ के 200 से अधिक पुरोहितों ने पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में भाग लिया और इस क्षेत्र के प्रथम पुरोहितों को विशेष रूप से याद किया। मिसा के बाद कार्मेलाइट पुरोहितों और मिशनरियों की कब्रों पर माल्यार्पण किया गया। संत पापा क्लेमेंट 8वें द्वारा 1604 में उन्हें एशिया जाने की अनुमति देने के बाद वे सन 1619 में गोवा आए। सप्ताह भर के समारोहों में कार्मेलाइट धर्म संघ के जनरल फादर सवेरियो कानिस्त्रा और उनके सलाहकार भी उपस्थित थे। वर्तमान में भारत में 7 कार्मेलाइट प्रोविंस हैं, जिसमें करीब 1,000 कार्मेलाइट पुरोहित हैं। 34 क्लोस्टर्ड कार्मेल कॉन्वेंट है, जहां करीब 500 कार्मेल धर्म बहने रहती हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।